तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन नदीम। हुसैन नदीम, शायद आप में से बहुत से लोग वैसे ही वाकिफ होंगे, आपने कई दफ़ा इन्हें खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के कई टीवी प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ तजियों के हवाले से सुना होगा, जिसमें सिक्योरिटी, इस्लामिक, हमारे यहाँ जो टेररिज्म वगैरह की जो न्यूज़ हैं, और सियासत के हवाले से भी सुना होगा, उनके तजिये भी पढ़े होंगे जो गाहे बगाहे अखबार में शाये हो सकते हैं। तो हुसैन नदीम, हमारे प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद।
बहुत शुक्रिया सलीम।
हुसैन, शायद बहुत सारे लोग आपसे वाकिफ़ हैं जिसमें आपके तजिये पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इन्होंने पता हो कि आप बाकायदा तौर पे 2014 के अवैध में, जब नवाज शरीफ की साहब की हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, तो वहाँ आप गवर्नमेंट से भी एक तरह से थोड़े वाबस्ता रहे, उसमें देखा तो, और उस हवाले से फिर आप मूव हो गए। इस पूरे अरसे में जो आपने जो नवाज शरीफ जिस हुकूमत के उतार चढ़ाव देखे हैं, और आपका खासतौर पर ताल्लुक़ प्लानिंग वगैरह से रहा, तो ये पाकिस्तान की सियासत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये जो आज हो रहा है और पहले हो रहा है, जो हमें नवाज शरीफ इतने भारी मैंडेट से भी आए लेकिन मुसलसल यरगमाल होते नज़र आते हैं, तो ये कहाँ कौन सी गलतियाँ हैं जो इनकी हुकूमत करती है?
आपने बड़ा एक वसी सवाल पूछा है कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे समझा जा सकता है। बड़ी डिफरेंट एनालिसिस हैं इसके ऊपर, बड़ी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, मगर अगर एक चीज़ को पिन पॉइंट करें हम कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है और 90s की, 2000s की और उससे पहले की सियासत को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो एक वर्ड जो है वो कम्प्लीटली इसको डिस्क्राइब करेगा और वो इनकॉम्पिटेंस। पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री रिलेशंस, पाकिस्तान की गवर्नेंस का इशू, टेररिज्म का इशू, इस वक्त पानी का इशू पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, इन सारों की बुनियादी वजह आपकी ये नहीं है कि हमारे आपस में झगड़े हैं या हमें हम करना नहीं चाहते, मुल्क को बदलना नहीं चाहते। मसला ये कि क्या हमारे पास सलाहियत है मुल्क को बदलने की या नहीं, एक इनकॉम्पिटेंस इशू है, दूसरा एक पोलिटिकल विल का इशू है, क्या हमारे अंदर विल है। अगर विल है तो इनकॉम्पिटेंस भी साथ है, जिसके बहुत चीज़ें पीएमएलएन की हुकूमत ठीक कर सकती थी, बहुत चीज़ें वो हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर अभी आप देखें जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन हुआ है, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्राइसिस है, और इससे पहले भी पीटीआई के बारे में भी जब उनके मुतालबात थे, धरना हुआ, 4-6 महीने बैठे, वो भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड केओस है। ये चीज़ें वो नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकती या इनको हैंडल नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि क्या आप इसको करना चाहते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं या नहीं है। इस वक्त हुकूमत डूबी हुई है पनामा केस स्कैंडल के अंदर, क्या इस हुकूमत को ये सूट करता है कि वो इस धरने को फौरन ख़त्म करे। अगर आप देखें तो इस धरने ने पनामा को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया न्यूज़ इशू में, न्यूज़ साइकिल में। तो क्या ये पीएमएलएन वाले जो हुकूमत में बैठे हैं, क्या वो ये देख रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को एक प्रोलॉन्ग किया जा रहा है इसकी सोल्यूशन को, और उसको जितना प्रोलॉन्ग करते जाएंगे इनकी अपनी हुकूमत भी इन द एंड डेंजर में आएगी। और इसी तरह जिस तरह से आपके इमरान खान ने जब मुतालबात किए थे इलेक्शन की धांधली के सिलसिले में, तो उसको भी जितनी हद तक ये लटका सकते थे इन्होंने लटकाया, टू अ पॉइंट के जहां पर इमरान खान ने धरने भी दिए और फिर धरनों को भी इन्होंने रिजॉल्व करने में टाइम लगाया। तो इनकॉम्पिटेंस कह लें, और इनकॉम्पिटेंस के अंदर एक एक इनकी पोलिटिकल विल के क्या हम इस चीज को ठीक करना चाहते हैं नहीं चाहते, वो आपके पाकिस्तान का बुनियादी इशू है। और वो हर चीज के अंदर, चाहे वो गवर्नेंस में है, बॉर्डर इशू में है, या जिसमें भी हो।
तो इस वक्त जो यहाँ आपने बात की कि इशू क्रिएट किया गया, इशू किसकी तरफ से क्रिएट किया गया है?
देखिए पाकिस्तान में इशू अंडर द सरफेस बेतहाशा हैं, किसको कब चाबी देनी है, कौन कब सरफेस पे आ जाए और किसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, वो हमारी बेतहाशा पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वहां पे, जो कि उसको डिफरेंट तरीके से यूज की जा सकती है। मैं किसी की तरफ खास डायरेक्शन नहीं दूंगा, मगर ये बात सिर्फ ये नहीं कि हम किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन का नाम लें, इसमें बेनिफिट करने वाले भी बेतहाशा हैं, इसमें जो आपके ग्रुप्स जो इनको डैमेज होंगे, अगर आप इनकी इस वक्त तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की अगर आप डिस्कोर्स अगर देखें जो इमर्ज हो रहा है, तो वो हाईली डिवाइसिव किस्म का डिस्कोर्स है, जिसके अंदर वो आपकी जमात अहमदिया के खिलाफ एक बात चल रही है, फिर हुकूमत के खिलाफ बात चल रही है, मिनिस्टरों के खिलाफ बात चल रही है, जबकि हर एक इंसान जो भी आपका पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल फोर्स है उसके खिलाफ चल रही है बात। ये डिस्कोर्स जो है ये आपका कई तरीके से डैमेजिंग इस तरह से है कि अगर आपकी ये नैरेटिव इमर्ज हो रहा है तो मीडिया के ऊपर ये बार बार रिसाइकल हो रहा है, इसके असरात उन माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर, इसके असरात उन मिनिस्टर्स की फैमिली के ऊपर, वो क्या होंगे, वो एक बड़ी हमारे लिए देखने वाली चीज़ होगी जिसके ऊपर हमें बहुत डैमेज होगा पाकिस्तान।
मैं इसी की बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि, और शायद हम सिक्योरिटी के रिले में जाएं, कि हमें नज़र आता है कि जब भी पाकिस्तान में मजहबी जमातों को की हिमायत की गई है, वो किसी भी सतह पे हो, PNA की तहरीक हो या उसके बाद भी जो भी गायब उसमें हुई हो, जो पूरा जो डिस्कोर्स है वो एक कदामत परस्ताना और आप उसे मैं दहशतगर्दी के हवाले से, फिर जो आगे बात आती है कि उस तरफ गया और फिर सारी दुनिया में यही बात होती है कि इस्लामिक दहशतगर्दी का, और जब भी बात की जाती है तो पाकिस्तान की बात आती है। तो अगर हम इस किस्म की जमातें, इस किस्म के उसको इंटरटेन करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, किसी तरफ से भी बढ़ाया जा रहा हो, किसी की शह की तरफ बढ़ाया जा, तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की दुनिया में स्टैंडिंग और ख़ुद पाकिस्तान के अवाम का क्या उस पर असरात होते हैं?
लेकिन दुनिया में स्टैंडिंग तो आपकी उसी वक्त डैमेज हो जाती है जब आपके 1500 या 2000 किसी भी जमात के लोग एक इस्लामाबाद को सीज कर लें। एक 20 करोड़ की अवाम, न्यूक्लियर पावर, स्ट्रांग मिलिट्री एजेंसियां, अगर 2000 लोगों को, और हकूमत एजेंसियों से ज्यादा मिलिट्री से ज्यादा, ये हकूमत का काम है, अगर वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती इस मसले को, अगर उनके साथ बैठ के उनके मुतालबात के ऊपर सीरियसली निगोशिएट नहीं कर सकती, तो ये आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और वीकनेस और लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन डालती है। और जब आपकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाती है सिविलियन गवर्नमेंट की, तो फिर आपकी दुनिया भर क्या आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्या आपके वो सीरियसली भी लेते हैं या नहीं लेते हैं आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को। और उसके अंदर बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो करंट सेटअप आपका पाकिस्तानी हुकूमत का है, हालांकि जमहूरियत है मगर नहायत ही अनडेमोक्रेटिक किस्म का सेटअप है कि आपकी एक गवर्नमेंट है, फेडरल कैबिनेट है, मगर आपकी हुकूमत अभी भी डिसॉल्वड प्राइम मिनिस्टर और उनका खानदान चला रहा है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक, इससे बड़ा स्टेप और कोई नहीं ले सकता जो कि हमारी जमहूरी पार्टी ने, हुकूमत ने लिया हुआ है। ये सारे इमेजेस जब आपके डिस्कोर्स में आते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल डिस्कोर्स के अंदर, तो पाकिस्तान का इमेज यही निकलता है कि ये अभी भी 90 की सियासत और उससे पहले की जो हालात हमने देखे हैं 70s and 80s में, वो अभी भी पाकिस्तान उसी में फंसा हुआ है, और बजाय इसके के उसी में फंसा रहे हम और ज्यादा उस दलदल के अंदर फंस गए हैं जहां पे अभी भी अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है विद दी रिलीजियस आउटफिट्स, जो कि एक गलत डिमांड है उनकी कि जी जाहिद हामिद साहब को हटाया जाए डायरेक्टली, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर हटाना बनता है तो उसके बाद बनता है, मगर इस वक्त वहां पे पावर प्ले ज्यादा चल रहा है और सेंसेस के अंदर बात कम हो रही है।
ये तो बिल्कुल नज़र आता है। दूसरी, हम सिक्योरिटी के मामले से ही बात को ज़रा से आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपका बहुत इसी में तजर्बा और बातचीत भी करते रहे। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वेस्ट की जानिब से भी जो मुख्तलिफ, जिसको सो कॉल हम कहें इस्लामिक दहशतगर्दी, उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ लॉज भी आते हैं ना, उसमें आपका ओपिनियन भी रहा है। एक तो ये कि इसके हवाले से ये लॉज किस कदर और जो भी इकदाम किए गए हैं किस कदर मौसर हैं, क्या ये वाकईतन कुछ कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये कि इसमें हमारी कम्युनिटी, ये तो है कि अब हम यहाँ आ गए, हम यहाँ रहते हैं और यहाँ के कवानीन के भी पाबंद हैं, तो उसमें किस तरह से हैं हम, उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं पॉजिटिव एज अ कम्युनिटी और उसका हिस्सा बने, या जो भी हमारी आवाज़ उसमें हो सकती है, अब उसकी बेजहरी मुखालफत तो जो भी हो सकती है, जो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन किस तरह से हम उसका पार्ट बन सकते हैं, हम एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पर सामने आ सकते हैं।
मैं इसके जो टर्म्स जो यूज़ होती नहीं, हम इसको एक एकेडमिया में कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग, और पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग के अंदर जो हम ये इस्लामिस्ट टेररिज्म, इस्लामी दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट एक पॉलिटिकल टर्म यूज होती है जिसके बाद आपका कोई भी एंड रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। बहुत अरसे से आपकी, जब अमेरिका के अंदर अभी कुछ अरसे से जब टेररिज्म के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं बाय वाइट क्रिश्चियंस, तो उसके बाद एक अवेयरनेस डेवलप हुई है विद इन दी वेस्टर्न एकेडेमिया एंड विद वेस्टर्न डिस्कोर्स एज वेल, के शायद टेररिज्म जो है उसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से नहीं है, ये मेंटेलिटी जो है जिसको हम इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, ये टेररिज्म है जो कि कुछ ग्रुप के लोग कहते हैं। तो ये कि अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है कि मुआशरे के अंदर एक जनरल डिस्कोर्स में आ गई है बात की जी टेररिज्म सिर्फ मुसलमान नहीं करते, बाकी लोगों का भी इसके अंदर हाथ है। दूसरी चीज इसके अंदर ये कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अंदर पॉलिसी क्या है, मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिकल रहा हूं उनकी पॉलिसीज के, और अभी भी उनकी कई पॉलिसीज के क्रिटिकल हूं। और उसकी वजह यह कि वो री इन्फोर्स करते हैं वही सर्टन आइडियाज कि जी हम और आप अलग हैं, अस वर्सेस देम, एक डिस्कोर्स को वो करते हैं जिसकी वजह से जो बेसिकली दहशतगर्द चाहते हैं वो चाहते ही है कि जी आपके जो मुसलमान या पाकिस्तानी इन वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं वो यहाँ पर रहना उनका जीना हराम हो जाए, उसकी इस सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस कम हो जाए, और एक कोई टेररिस्ट जाके कोई किसी जगह हरकत करता है उसका पूरा रिएक्शन कम्युनिटी के ऊपर आता है, और कम्युनिटी जो है वो एक उस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि जी हम ऐसे नहीं हैं। मेरे नज़दीक जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ हैं जिसको वो काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं वो एक तो इल डिज़ाइंड है, उनका कोई पर्पज़ एज सच नज़र नहीं आता कि जी ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। अब एक पॉलिसी थी कि जी 8 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक जितने बच्चे हैं उनको डी रेडिकलाइज किया जाए, एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी है कि आप किस तरीके से एक बच्चे को कह सकते हैं ये 8 साल का बच्चा जो है वो ग्रोइंग अप टेंडेंसीज शो कर रहा है या वो टेररिज्म शो कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये अगर कोई 8, 10, 12 साल की बच्ची या कोई बच्चा जो है वो दाढ़ी बाल उगाने की कोशिश करता है या कोई हिजाब लेने की कोशिश करता है तो ये साइन है रेडिकलाइजेशन। तो उसके ऊपर मेरी बड़ी बहस हुई जिसके ऊपर मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये बात भी समझाई कि जहाँ तक ये बात आपको टेररिज्म का साइन लग रही है तो मुसलमान जो माँ बाप है उनके लिए तो ये साइन होगा कि ये बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं बच्चे, दीन की तरफ आ रहे हैं। तो ये हम इसको बड़ी मुश्किल से इसको थ्योराइज कर सकते हैं और इसको हम इसको फिर गेज किस तरह से करना है कि जो आप $40-50 मिलियन के जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनके किस तरीके से आपने गेज करना है, उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इंग्लैंड के अंदर 10 साल ये प्रोग्राम चले हैं, अमेरिका के अंदर 10 साल ये प्रोग्राम चले हैं प्रिवेंट स्ट्रैटेजी के अंदर, और दोनों फेल हुए हैं। और इस वक्त जो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन का हाल है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बदतर है। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर काफी ज्यादा गाह की है कि हमें उनके चीजों उनके प्रोग्राम से सीखना चाहिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर आप ले लें मिसाल, यहाँ पे हाईली एजुकेटेड है, करंट सेंसिस के अंदर जो आए हैं हाईली एजुकेटेड, माइग्रेशन पैटर्न आपका हाईली क्वालिफाइड, बेटर इक्विप्ड एंड बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जाके सेकंड जनरेशन भी अच्छे आपके निकल रहे हैं और आपकी फर्स्ट जनरेशन जो मोर माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो एक बड़ी अच्छी कंपनीज के अंदर आ रहे हैं। तो क्या आपको इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म के ऊपर इनको लेबल देना चाहिए? मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और जो बाकी मुसलमान कम्युनिटीज बैठी हुई हैं यहाँ पे वो ओवर द टाइम पीरियड शायद टेररिज्म की वजह से और जो जिहादी हैं उनकी वजह से कम रेडिकलाइज होगी, मगर हुकूमत की पॉलिसियों से ज़्यादा रेडिकलाइज होने का चांस उनका ज़्यादा है।